1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहने वाले मुसलमान पीर सुलेमान ने जो आगे चलकर एक सिखों के संत ईश्वर सिंह जी महाराज की कृपा से 5 अगस्त सन 1968 को एक सिख परिवार में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए और उनका नाम छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में प्रवेश करके अपने परलोक संबंधी आश्चर्यजनक स्वयं की आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है, वो रोमांचकारी है, बहुत सावधान करने वाला है, अपने आदत और स्वभाव को सुधारने वाली घटना है। उतने हमारे शास्त्र पुराणों की परलोक संबंधी बातों को प्रमाणित करने की बातें हैं। पूज्य संत महाराज की सेवा में रहने वाले मास्टर राजेंद्र सिंह जी ने हमको ये लिखा तो हमने छात्र मनमोहन सिंह को अपने एकांत स्थान में ले जाकर उसके शरीर में स्थित 1000 वर्ष के मुसलमान पीर प्रेत से परलोक संबंधी प्रश्न अरूबरू किए, सामने किए, तो उसने हमको जो जो उत्तर दिए वो आपको दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेत, मेरा नाम सुलेमान है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं ईरान का रहने वाला मुसलमान हूँ। तुम हिंदुस्तान कैसे आए? एक मुसलमान बादशाह हिंदुस्तान को लूटने के लिए यहाँ आया था, हम उसी बादशाह की सेना के साथ यहाँ आए थे। वह तो इस देश को लूटकर अपने मुल्क को वापिस चला गया, लेकिन मैं यहीं हिंदुस्तान में रह गया। यहीं मैंने एक औरत से शादी कर ली और मैं जिला सहारनपुर के मुगल खेड़ा नामक एक गांव में रहने लगा। मेरे उस औरत से 2 लड़के 2 लड़कियां हुई, इस प्रकार मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे नज़दीक उन दिनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था जो इस समय मनमोहन सिंह के रूप में आपके सामने बैठा है। यह तपस्वी ताबीज तंत्र मंत्र आदि का भी काम करता था और साथ साथ में पाखंड भी करता था। मेरी एक नौजवान बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिससे उस तपस्वी साधु ने अपने नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लिए, अनुचित संबंध कर लिया। उन नाजायज ताल्लुकात का मुझे पता चला। मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि किसी प्रकार इनके नाजायज ताल्लुकात टूट जाए। खुद भी मैंने बहुत समझाया बुझाया और उस वक्त की हकूमत के जरिए भी ताल्लुका तोड़वाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। मेरे दिल पर इस बात का ऐसा गहरा असर हुआ कि मैंने उस वक्त अपने उस खुदा बंद ताला से ये दुआ की कि मैं इससे इसका बदला किस प्रकार लेऊं? हे परवरदिगार, तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर। इसी ख्याल में मैं कुछ दिनों के बाद मर गया। सुलेमान जी, तुम अपने मरने के वक्त की सारी हकीकत बता सकते हो? तुम कैसे मरे और उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? जब मेरे मरने का वक्त आया तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, मेरी जबान एकदम बंद हो गई, मुझे उस समय चार यमराज के दूत लेने आए। वे आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए और मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी शक्ल सूरत के थे। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। मैं इशारे करता था लेकिन मुझसे उस समय अपनी जबान से बोला नहीं जाता था। उन दूतों के स्थूल शरीर नहीं थे इसलिए वे किसी अन्य को दिखाई नहीं देते थे, बस वे सिर्फ मुझे ही दिखलाई देते थे। मरते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जैसे एक झाड़ी जिसमें कोई पत्ता न हो, उसमें लंबे लंबे नकुले कांटे लगे हुए हों, उसके ऊपर बारीक मलमल का कपड़ा डाल दिया जाए और उसे बड़ी बेरहमी से खींचा जाए तो उस कपड़े का एक एक धागा अलग हो जाएगा। यही मिसाल उस समय के मेरे आत्मा की है। मुझे मरते वक्त इतना घोर दुख हुआ कि मैं उसे बता नहीं सकता। यमराज के दूत जब तुम्हें धर्मराज के सामने ले गए तो उस समय रास्ते में तुम्हारे साथ क्या गुजरी? जब यमराज के उन दूतों ने शरीर से प्राण निकाले तो मेरी रूह को, जिसका सूक्ष्म शरीर होता है और वह आम लोगों को नजर में आता नहीं है, वे उसको मारते मारते ले गए। करीबन एक वर्ष का समय लगा होगा तब मुझे धर्मराज के सामने ले जाकर पेश किया गया। अब बताओ कि जब तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया गया था उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी? धर्मराज के पास पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के फरिश्ते ने मेरी जिंदगी के जितने भी पुण्य पाप थे सबका सारा हिसाब किताब धर्मराज को बताया। धर्मराज ने सब देख सुनकर मुझे ये सजा सुनाई कि तुम्हारे पाप कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें अब कुंभी पाक नरक में डाला जाएगा और उस नरक भोग के बाद तुमको 1000 बरस के लिए प्रेत योनि मिलेगी। तुम्हारा वह प्रेत योनि का 1000 वर्ष का समय पूरा हो जाएगा तब तुम्हें, जिसने तुम्हारी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा किए थे और जिससे बदला लेने के लिए तुमने खुदा से प्रार्थना की थी, वही तुम्हें फिर से मनुष्य के रूप में मिलेगा। तब तुम उससे अपना बदला ले सकोगे। फिर तुमको और उसको कोई महापुरुष मिलेंगे और तुम दोनों का कल्याण कर देंगे। क्या कुंभीपाक नरक तुमने देखा? कुंभीपाक नरक तकरीबन 1000 योजन लंबा और 1000 योजन चौड़ा है। उसका मुंह केवल 9 इंच चौड़ा है। इस 9 इंच के संकरे छेद से पापी जीवों को उसके भीतर ढकेल ढकेल कर ठूस ठूस कर डाला जाता है और उस पापी जीव को जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होती उसी नरक में रहना पड़ता है। उस कुंभीपाक नरक में क्या क्या तकलीफें हैं? उस कुंभीपाक नरक के अंदर गंदगी, टट्टी, पेशाब, खून, मवाद, पीक, आग और ऐसी ऐसी बहुत सी दुख देने वाली वस्तुएं हैं कि जिनके द्वारा उस पापी जीव को बड़ी बड़ी तकलीफें दी जाती हैं। कभी तो उसे पकड़कर नरक की आग में जलाया जाता है, कभी गंदगी में अर्थात टट्टी के कुएं में डुबो दिया जाता है, जो परस्त्रीगामी होते हैं उन्हें पकड़कर आग में तपाई हुई लोहे की स्त्री से चिपटा दिया जाता है। इस प्रकार पापियों को वहां भिन्न भिन्न प्रकार की घोर यातनाएं दी जाती है। समय पूरा होने पर फिर उस जीव को कुंभीपाक नरक से निकालकर दूसरी योनि में डाला जाता है। कुंभीपाक नरक से निकालने के बाद तुम्हारा क्या किया गया था सुलेमान जी? मुझे कुंभीपाक की घोर यातनाएं भोगने के बाद निकालकर एक प्रेत योनि दे दी गई। प्रेत योनि मिलने पर मैं अपने गांव मुगलखेड़ में, जहां मेरी कब्र बनी हुई है, वहीं जाकर रहने लगा। मेरे मजार पर पूजा करने वाले जो लोग आते थे, मैं उन सब को देखता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता था। मेरे साथ वहां 5 पीर और भी रहते थे। उनमें से एक प्रेत की उम्र 2500, दूसरे की 3000, तीसरे की 3500, चौथे की 5000 बरस की और पांचवें की उम्र 4 युगों की है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। उसे पिछले कलयुग में प्रेत योनि की प्राप्त हुई, वो अब तक इस योनि में पड़ा है। जिस प्रेत की उम्र 4 युगों की है, उसका कल्याण कैसे होगा सुलेमान? कोई महापुरुष ही उसका उद्धार करेगा, नहीं तो कलयुग के आखिर में जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तभी उसका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो सुलेमान, तुम इस मनमोहन सिंह के शरीर में कैसे आए? प्रेत योनि के लिए निर्धारित मेरे 1000 वर्ष पूरे होने में कुछ वर्ष बाकी थे, तो इस लड़के मनमोहन सिंह ने, जो पिछले जन्म में तपस्वी था और जिसका मेरी लड़की से नाजायज ताल्लुका था, एक दिन अचानक आकर मेरे मजार पर पेशाब कर दिया। मैंने इसे खूब गौर से देखा तो इसकी आत्मा को मैंने पहचान लिया कि अच्छा, ये तो वही तपस्वी है जिसने मेरी लड़की से अपने नाजायज ताल्लुकात पैदा किए थे। और मैंने तुरंत यह तय कर लिया कि मैं अब इससे अपना बदला अवश्य लूंगा। मैंने झट से इसे पकड़ लिया और इसके शरीर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने और बहुतों को पकड़ पकड़ कर मार दिया, पर इसे इसलिए नहीं मारा कि इसके द्वारा मेरा उद्धार होना था। अब 7 साल से मैं इस लड़के मनमोहन सिंह के अंदर रहता हूं और अब वो समय आ गया है जो धर्मराज ने मेरी और इसकी मुक्ति के लिए समय निर्धारित किया था। उनकी सभी बातें सिद्ध हो रही हैं। मैंने इसे खूब सताकर इससे अपना बदला ले लिया है और अब हमें संत जी का मिलाप भी हो गया है और अब हम दोनों का कल्याण होने वाला है। इंसान का कल्याण कौन से वजन से हो सकता है सलेमान? अपने अपने गुरु का दिया हुआ भगवान का नाम जपने से इंसान का कल्याण हो जाता है। ये धर्मराज कैसा था सुलेमान? धर्मराज बहुत ही खूबसूरत था। उसके सफेद लंबी दाढ़ी थी और सिर पर केस थे। वह बड़े रौब और जलाल वाला था। जलाल माने प्रभाव वाला। उसका शरीर सूक्ष्म और बड़ा दिव्य था तथा उसमें अपने शरीर को पलटने की भी ताकत है। शरीर को बदल ले, पलट ले। सलेमान, ये जो प्रेत योनि में जो जाते हैं, वो उनकी खुराक क्या है, वे क्या खाते पीते हैं? प्रेत योनि में गए हुए प्राणी हड्डियां चूसते हैं, खून पीते हैं, गंदी वस्तु खाते हैं तथा लकड़ी के बुझे हुए कोयले खाते हैं, ये उनकी खुराक है। तुम प्रेत लोग कहां पर रहते हो सुलेमान? हम खंडहरों में रहते हैं या पेड़ के ऊपर लटकते रहते हैं, खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हमारी आवाज इतनी सूक्ष्म होती है किसी के कान तक नहीं पहुंचती। कोई व्यक्ति यदि उस पेड़ के नीचे हो या टहनी पर हो और हम लोग जोर से पुकारे भी, तो भी वो आवाज सुनाई नहीं देगी। हम हमारी शक्ति से जोर से पुकारते हैं, पर वो इन लोगों के इंद्रियों में, कानों में हमारी पुकार नहीं पहुंचती। हमें भूख प्यास कोई मामूली नहीं लगती है, बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है। हमें खूब खाने को चाहिए और खूब पीने को चाहिए। हम लोग वास्तव में हर दृष्टि से बहुत दुखी रहते हैं। तुम्हें ये प्रेतियोनि क्यों मिली? मुझे प्रेतियोनि इसलिए मिली कि मेरे पाप बहुत भयानक थे। मैं गंडे ताबीज बनाने, बेचने और झाड़ फूंक का काम करता था। भूत प्रेतों को निकालने का झूठा धंधा भी करता था और लोगों के सामने झूठ साँच ऊट पटांग बातें बना बना करके पैसे ऐंठता था। इसी काले इल्म की वजह से मुझे यह प्रेत योनि मिली। मेरी जिंदगी में मेरे सारे कर्म बड़े गंदे थे और मैंने दूसरों की औरतों से अपने बड़े नाजायज ताल्लुकात पैदा कर रखे थे। मैंने और भी बड़े बड़े कुकर्म किए, बड़े बड़े घोर पाप किए थे, जिस कारण मुझे कुंभिपाक नरक में जाना पड़ा और अपने किए हुए पापों का फल इस प्रकार मुझे भोगना पड़ा। जब इन नरकों में प्राणी जाता है, तब उसके सारे पाप गिनाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। जैसे अदालत के अंदर जज सरेआम उसका इल्म सुनाता है, अपराध सुनाता है, इसी प्रकार धर्मराज की खुली अदालत में मुझे मेरे अपराध गिनाए गए और मुझसे स्वीकार कराया गया कि बोलो ये है ना, तो मुझे स्वीकार करना पड़ा। इस कारण मुझे 1000 वर्ष की प्रेत योनि मिली, जिसके कष्ट में अब समय में भोग रहा हूं। क्या तुम प्रेतों को, भूतों को कथा कीर्तन में, सत्संग में कभी शांति मिलते हुए देखी है? कभी तुम कथा कीर्तन सत्संग में जा सकते हो? प्रेत और अन्य भूत योनियों को सत्संग में तथा कीर्तन में आने का हुक्म नहीं है। अगर भूत प्रेत कथा कीर्तन में, सत्संग में आते हैं, तो उन्हें आग जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर किसी आग में बैठ गया हो। जहां कथा कीर्तन और सत्संग होता है, वहां से भूत प्रेत कोसों दूर भागे रहते हैं। उनको वहां से बड़ा डर लगता है। यदि कोई भी प्रेत किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और फिर वह आदमी किसी महापुरुष की शरण में चला जाए और उस महापुरुष की दया दृष्टि से उसके लिए यह आदेश हो जाए कि जाओ तुम सत्संग करो, कथा कीर्तन सुनो, तुम्हें शांति प्राप्त होगी, तो उसे सत्संग करने तथा कीर्तन सुनने से अवश्य शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार की बात हुई। तो ये प्रेत से किए हुए साक्षात्कार प्रश्नोत्तर हमको मास्टर राजेंद्र सिंह जी ने ज्यों के त्यों बताए हैं। ये स्मरण रहे कि छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में रहने पर वो मुसलमान प्रेत कुरान की आयतें बोलता था, जबकि वह छात्र कुरान का एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता था। इन सब घटनाओं से ये बात सिद्ध होती है कि परलोक और पुनर्जन्म केवल हिंदुओं का ही नहीं, ये मुसलमान भी इसमें सभी मानव आ जाते हैं। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात है लोग कहते हैं श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन से परलोकगत आत्मा की तुष्टि होती है कि नहीं। इस विषय में पुरी के शंकराचार्य जी, गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जुबानी बिल्कुल सत्य घटना बताई जाती है। उन्होंने बताया गत वर्ष कार्तिक पूर्णिमा विक्रम संवत 2025 की बात है, भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ गढ़ मुक्तेश्वर मेले पर एक विराट सनातन धर्म सम्मेलन हुआ। उसमें भारत के सुप्रसिद्ध धर्माचार्य परम पूज्यपाद श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य, गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज भी कृपा करके पधारे थे। चर्चा चली, प्रसंगवश पूज्यपाद श्री आचार्य चरण ने अपने मुख से एक परलोकगत आत्मा ने किस प्रकार अपने लिए अपनी पुत्री से श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन दान आदि की मांग की और उसके निमित्त सब कुछ कर कराने पर उसे किस प्रकार पूर्ण संतुष्टि हुई, यह एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना यहाँ लिखी जा रही है। उन्होंने बताया अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, हम बिहार में गिच्छी गए थे, वहां एक तमिल परिवार रहता था। वे तमिल सज्जन एक सरकारी कर्मचारी हैं। एक दिन उनकी धर्मपत्नी हमारे निवास स्थान पर आकर हमसे मिली। वे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थी, इसलिए उन्होंने अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करते हुए बताया, महाराज हम लोग तमिल हैं, हमारे प्रदेश की और हमारे जाति की प्राचीन प्रथा के अनुसार कन्या ही माता की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी हुआ करती है, इसलिए अपनी माता के देहावसान पर मैं भी इस प्रथा के अनुसार अपनी माता की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी बनी। तमिल में ऐसा नियम है, अपने यहाँ तो जब लड़का लड़की की शादी हो जाए तो लड़के के साथ में लड़की चली जाती है अपने ससुराल, वहाँ यह है कि शादी होने के बाद वो लड़का अपने ससुराल रहता है, वहाँ ये बात है, इसलिए संपत्ति लड़की की होती है। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मैं सदा सुख शांति बड़े आनंद के साथ रही, मुझे किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं था, पर जो ही मेरा विवाह हुआ और मैं ससुराल गई, ये तो ससुराल गई लिखे, ससुराल गई त्यों ही मेरे चित्त में निरंतर बड़ी बेचैनी अशांति क्लेश होने लगे। रात्रि में नींद नहीं आई, ससुराल में सब प्रकार का सुख था, कोई कमी नहीं थी, पति सास ससुर सब बड़े प्रेम भाव रखते थे, अच्छा व्यवहार था, फिर भी मेरे मन में जाने क्यों क्लेश रहता था, मैं स्वयं भी नहीं समझ सकी कि मेरे दुख का कारण क्या है। एक दिन मैं नित्य के भांति रात्रि में अपने पलंग पर सोई हुई थी, उस समय में मैं अर्ध जागृत अवस्था में थी, अचानक मुझे मेरी स्वर्गीय माँ दिखाई पड़ी। माताजी उस समय बड़ी बेचैन और दयनीय अवस्था में थी, मैं उनको देखकर घबरा उठी, मैंने माता जी को दुखद अवस्था में देखकर बड़ा कष्ट अनुभव किया। उस दिन दुख के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। कई दिनों तक मेरा बुरा हाल रहा। मैंने अपने पूज्य पतिदेव को अपनी पूज्या माता के इस प्रकार की कष्टकर अवस्था में दर्शन होने की बात सुनाई तो वो मेरी बात सुनकर बड़े विस्मित और दुखी हो गए। अंत में एक दिन मैंने अपने पूज्य पतिदेव के साथ रात्रि में एक जगह बैठकर अपनी स्वर्गीय माँ का मन ही मन ध्यान किया और कहा, माता जी, हमें आपको दुखी अवस्था में देखकर बड़ा भारी दुख हो रहा है। आप स्वयं क्यों ऐसी दुखी अवस्था में हैं, हमको भी बताओ, क्योंकि हम भी आपके दुख से दुखी हैं। हमको क्यों दुखी करते हो, इसका कारण बताओ, और यदि हमसे कोई भूल अपराध हो गया हो तो क्षमा करो, और उस भूल को भी कैसे दूर की जाए उसका उपाय बताओ। आपकी जो आज्ञा होगी हम उसका पालन करेंगे। आपकी बेचैनी और दुख दूर करने की यथाशक्ति हम लोग सेवा करेंगे। ये प्रार्थना कर हम बिस्तर पर लेट गए और नींद लेने का प्रयत्न करने लगे, पर प्रयत्न करने पर भी उस दिन हमें नींद नहीं आई। कुछ देर बाद अकस्मात माता जी दिखाई दी और स्पष्ट शब्दों में बड़े क्रुद्ध होकर मुझे कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति की स्वामिनी तुमको बनाया था, किंतु मैं आज यहाँ भयानक कष्ट पा रही हूँ। तुम लोग मेरी संपत्ति का खूब उपभोग कर रहे हो पर मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। मेरे पास वस्त्र आदि कुछ नहीं है, मैं भूख प्यास में भटक रही हूँ। इधर बिना वस्त्र के ठंड से मुझे बड़ी परेशानी होती है। मैं इस समय बड़ी दीन दुखी और अशांत अवस्था में पड़ी हूँ और तुम लोग मेरे लिए इस समय कुछ भी नहीं करोगे तो मुझे कुछ नहीं दोगे। बस याद रखना, मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूंगी और तुम्हें जिंदगी में कभी शांति से नहीं रहने दूंगी, बराबर बेचैन बनाए रखूंगी। अब तो माता जी के ये फटकार पूर्ण शब्द सुनकर के बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य हुआ। क्या करें, गलती के लिए पश्चाताप होने लगा। मैंने अपनी माता जी से नम्र शब्दों में प्रार्थना की, माँ, अपने प्रदेश में जिस प्रकार के ब्राह्मण हुआ करते हैं वहाँ पर वैसे ब्राह्मण नहीं मिले हैं और न अपने देश की प्रथा के अनुसार यहाँ वैसे विधि विधान से श्राद्ध आदि कराए जाते हैं, इसलिए यहाँ आने पर आपके निमित्त श्राद्ध ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकी। मेरा घोर अपराध यही हुआ है, आप हमें अपराध के लिए क्षमा करें और अब हमको बताएं कि किस विधि विधान से हम श्राद्ध करें। अब इतने दिन तक श्राद्ध नहीं हो सका तो अब क्या करें, किस तरह करें, प्रायश्चित्य भी क्या करें, जो आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। हमारी माताजी ने सुनकर कहा, देश काल के अनुसार यहाँ पर तुम्हें जो अच्छे अभी ब्राह्मण मिले और तुम्हारा मन अच्छी तरह से उन्हें स्वीकार करता हो तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने अपने घर पर बुलाकर वे जो विधि बताए उस विधि से उनके द्वारा मेरा श्राद्ध कराओ, श्रद्धा भक्ति से उनको भोजन कराओ, मेरे निमित्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो, मेरे निमित्त वस्त्र और अन्न भी दो। तुम्हारा इस प्रकार से दिया हुआ दान मुझे मिलेगा और इससे मुझे निश्चय तृप्ति और संतुष्टि होगी। माता के अनुसार मैंने दूसरे ही दिन वहाँ विद्वान सदाचारी ब्राह्मणों को घर पर बुलाया, श्रद्धा के साथ श्राद्ध तर्पण आदि करवाए, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा आदि दी, यथाशक्ति सब प्रकार से वस्तुओं से संतुष्ट किया और प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लिया और बड़ी नम्रता से उनको हमने विदा किया। मैंने अपनी पूज्या माता के आज्ञानुसार श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा सब करवा तो दिए, फिर भी मन में यही शंका रही कि मेरे द्वारा दिए हुए दान श्रद्धा श्राद्ध माता जी को मिले होंगे कि या नहीं मिले होंगे, वो मेरे पर प्रसन्न हैं कि नहीं हैं, उन्होंने हमको क्षमा कर दिया कि नहीं कर दिया, क्या करें। मेरे मन में बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था और इस शंका को देखकर माताजी ने 2-3 दिन बाद मुझे पुनः स्वप्न में दर्शन देते हुए बहुत प्रसन्न मुद्रा में बड़े प्रेम से कहा, बेटी अब मैं तुम्हारे श्राद्ध कर्म से तर्पण से मेरे निमित्त कराए गए ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मण को अन्न तथा वस्त्रादि देने से बड़ी संतुष्ट हुई हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बेटी तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। तुमने मुझे आवश्यकता से अधिक दिया है। तुम्हारे दिए हुए भोजन से मैं पूर्ण रूप से संतृप्त संतुष्ट हो चुकी हूँ। तुमने मुझे वस्त्र तो इतने अधिक दे दिए कि मुझे पसीना आ जाता है। अब मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम लोगों के ऊपर बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब मेरा तुम लोगों से यही कहना है कि मेरे निमित्त प्रतिवर्ष श्राद्ध के दिनों में एक बार श्राद्ध अवश्य करा देना। बस इसी में सुख शांति छिपी हुई है और तुम लोग सदा प्रसन्न रहोगे और मैं तुमको प्रसन्न करा रखा करूंगी। माताजी के मुख से तुम्हें दिया तुम्हारे द्वारा दिया हुआ सब कुछ प्राप्त हो गया ये सुनकर सब शंकाएं समाप्त हो गई। अब हमारे हृदय में वो दुख भी नहीं रहा और प्रतिवर्ष हम लोग श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, ये नियम अभी तक चलता है। ये काम ये कथा शंकराचार्य जी महाराज ने अपने श्रीमुख से सुनी और आचार्य चरण ने एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी तमिल महिला के द्वारा कही हुई बिल्कुल सत्य घटना बताई है। क्या अब भी हमारे शास्त्र और पुराणों में दी हुई श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन द्वारा पितरों को तृप्त करने की बातों पर कोई अविश्वास रह गया? ये अविश्वास करने की कोई जगह नहीं है। हमारे सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों की सभी बातें अक्षर अक्षर से सत्य है। ये घटना इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्यावर रामचंद्र की
जय।
मोर मुकुट वंशी वाले की
जय।
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
आनंद कंद भगवान की
जय।
भक्त वत्सल भगवान की
जय।